المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. صلوات پڑھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعزان گرامی، ایک زمانہ تھا جب علم کی اہمیت کے اوپر تقریر کرنی پڑتی تھی. الحمدللہ آج وہ دور ہے کہ یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ علم بڑی قیمتی چیز ہے. آج اس کو سب جانتے ہیں. جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کم سے کم ان کی اولاد پڑھ لکھ لے. آج یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ علم کی اتنی شاخیں ہیں، اتنا وسیع میدان ہے علم کا کہ انسان کی عمر تھوڑی سی ہے. اس تھوڑی سی عمر میں سارا علم انسان حاصل نہیں کر سکتا. ایسے موقع پر جب سب کچھ لینا ممکن نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ چنتے ہیں، اس میں سے انتخاب کرتے ہیں. صبح سے شام تک ہم لوگ انتخابی تو کرتے رہتے ہیں نا، چنتے رہے، سارا کام تو نہیں کر سکتے. تو کچھ کام جو زیادہ ضروری ہوتا ہے اسے لے لیتے ہیں، جو کم ضروری ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں. یہی کرتے ہیں نا. اب رات میں جائیں گے بستر پہ سو گئے، اب ایک موقع جب آتا ہے کہ جب دو کام سامنے آ جاتا ہے، ایک تو نیند ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، دوسری طرف سے نماز کا وقت آ گیا، اٹھیں کہ نہ اٹھیں؟ چوائس کر، انتخاب کرنا ہے. دونوں کام نہیں ہو سکتا کہ سوتے بھی رہیں اور نماز بھی پڑھ لیں؟ ہو سکتا ہے؟ دونوں کام نہیں ہو سکتا، یا نیند قربان یا نماز قربان. اب کچھ لوگ نیند کو قربان کر دیتے ہیں اور کچھ. اس کے بعد آگے بڑھئے اور صبح ہو گئی، 7, 8, 9, 10 بج گیا، ابھی بھی نیند پوری نہیں ہوئی، لیٹ سوئے ہیں نا. خیر کل تو چھٹی ہے، سنڈے ہے، لیکن اگر یہ جو ہے ویک ڈیز ہے، آفس بھی جانا ہے، دکان پہ بھی جانا ہے، نیند پوری بھی نہیں ہوئی، یا سوئیں یا آفس جائیں، دو میں سے ایک ہی کام کر سکتے ہیں نا. البتہ یہاں کے اوپر نیند ہی قربان ہوتی، آفس قربان نہیں ہوتا. وہاں تو ممکن ہے کہ نماز قربان ہو جائے، لیکن نہیں، یہاں کے اوپر تو بہرحال آنکھیں ملتے ہی صحیح، اٹھنا تو پڑے گا. تو بہرحال انسان انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے. تو علم کی دنیا بہت وسیع ہے، سارے علوم کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا, وہ فقط معصوم کی ذات ہے جن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نہیں, ہم تو وہ ہیں جنہیں پڑھنا پڑتا ہے نا, ان کو علم تو اللہ نے دے دیا, ہمیں حاصل کرنا پڑتا ہے, ہم سب نہیں حاصل کر سکتے. تو جس علم کی ہماری نگاہوں میں زیادہ اہمیت ہوتی ہے اسے حاصل کر لیتے ہیں, اور جس کی اہمیت کم ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں. ایک سب سے اہم علم جس کا جاننا بہت ضروری ہے سب کے لیے, جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا, وہ ہے اپنی حیثیت کا علم, اپنی پوزیشن کا علم, ہم کہاں ہیں, کس جگہ پر ہیں. کیونکہ جب ہمیں اپنی حیثیت اور پوزیشن کا علم ہو جاتا ہے تو اس کا دو فائدہ ہے. ایک تو ہمارے عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے, دوسرے یہ ہے کہ یہ جو ہے مشکلوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں مشکلوں, یہ جو ہے مشکلوں سے تو چھٹکارا نہیں ہے اس دنیا میں. اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہمارے زندگی میں کوئی جو ہے مشکل ہی نہیں ہے. مشکلیں سب کے لیے ہیں, البتہ مشکلوں کی شکل الگ الگ ہے. کسی کی جو ہے مشکل یہ ہے کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, کسی کی مشکل ہے کھانے کو تو رکھا ہے مگر کھا نہیں سکتے, ٹیبل پہ سب کچھ سجا ہوا ہے سب کچھ, لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ ابلی سبزی کے علاوہ کچھ مت کھانا, ورنہ آج تو کھا لو گے پھر کچھ کھانا نصیب نہ ہوگا. تو یہی کرتے ہیں نا, ہر ایک کی مشکل ہے, ایک کی مشکل یہ کھانے کو نہیں, ایک کی مشکل ہے تو کھانے کو, ایک کی مشکل یہ ہے کہ سونے کے لیے بستر نہیں ہے اس کے پاس, دوسرے کی مشکل ہے بستر تو ہے مگر نیند نہیں آتی. تو دنیا میں کون ہے جس کے پاس مشکل نہیں ہے؟ مصیبتوں کا سامنا تو سب کو کرنا پڑتا ہے, مصیبتوں کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے آرام میں ہیں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس دنیا کے بارے میں کہ انما الدنیا دار محفوف بالبلاء, یہ وہ دنیا ہے, وہ جگہ ہے جو بلاؤں سے گھری ہوئی ہے. جس طرح سے اگر کوئی سمندر میں ڈبکی لگائے, سمندر میں ڈبکی لگانے والا کیا یہ امید کر سکتا ہے اس کے چاروں طرف پانی نہ ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یا سمندر میں جاؤ نہیں, اور اگر سمندر میں آئے ہو تو پانی کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ سمندر ہی کیا جس میں پانی نہ ہو؟ وہ دنیا ہی کیا ہے جہاں مصیبت نہ ہو؟ وہ جنت ہے جہاں مصیبت نہیں ہے. دنیا تو نام ہی ہے مصیبتوں کا. تو بہرحال جب انسان کو اپنی پوزیشن کا اندازہ ہو جاتا ہے, حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے, دو فائدہ ہے, ایک عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے, دوسرے جو ہے مصیبت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم گئے کسی صاحب کے ہاں, شادی تھی, ہمیں نہیں پتا کہ ہم شادی میں جا رہے ہیں یا موت میں جا رہے ہیں, معلوم ہی نہیں. شادی میں گئے موت کا کپڑا پہن کر کے, الگ الگ ہوتا ہے نا, موت کا کپڑا الگ ہے, شادی کا جوڑا الگ ہے. ہم وہاں پہ گئے موت کا کپڑا پہنے ہوئے, گئے تو ایک صاحب آئے جنہیں پتا تھا کہ شادی ہے, شادی کا کپڑا پہن کے گئے, شادی کی حیثیت سے گئے, خوش خوش گئے, ہمیں پتا نہیں تھا, ہم موت کا کپڑا پہن کے گئے, چہرہ اترا ہوا, منہ لٹکا ہوا, ان کا استقبال ہو رہا ہے, ہمیں گھور کے دیکھا جا رہا ہے. کام تو ہم نے بھی وہی کیا ہے نا, اتنی ہی دور گاڑی چلا کے ہم بھی آئے ہیں, اپنا وقت صرف کیا ہے, سب کچھ, وجہ کیا ہے؟ کہا جس جگہ پہ آئے ہو تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم آئے کہاں پہ ہو, موت کے گھر آئے ہو, یا اسی کو الٹ دیجئے, کہیں کے اوپر موت ہو گئی تھی اور وہاں کے اوپر تڑک بھڑک جو ہے کپڑا پہن کر کے چلے آ رہے ہیں, ہنستے ہوئے کودتے ہوئے, بھائی واہ 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 واہ, یہ جو ہے مبارک ہو, مبارک مبارک, تھپڑ لگیں گے نا وہاں پہ. دوسرے صاحب آئے غم کی فضا لیے ہوئے, بڑا افسوس ہوا, تعزیت پیش کرتے ہیں, خدا رحمت کرے, اللہ آپ کو صبر دے, آپ کا وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں, ہمیں گور کے دیکھ رہے, ہمیں تھپڑ لگا رہے, کام تو وہی کیا نا ہم نے. انسان کو جب اپنی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے, کہاں کھڑے ہوئے ہیں, کس جگہ پہ کھڑے ہیں, تو عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے. दूसरा फायदा होता है अपनी पोजीशन को जान लेने का कि मुश्किलें आसान हो जाती हैं। मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि किसान खेत में जाता है काम करने के लिए, धूप है ना खेत में, लू चल रही है, फसल काटने का जमाना है, तो वहां पर लू भी चलती है, उस जमाने में खूब गर्मी पड़ रही है, जबरदस्त गर्मी है, आराम से किसान, कभी किसी किसान को सुना कि बहुत गर्मी लग रही है, वही किसान खेत से घर आया, घर आया रात में सो रहा है, पावर कट हो गया, अपने इंडिया में चलता है ना ये सब, तो अचानक 12 बजे रात में बिजली चली गई, पंखा रुक गया, अब उठता है, ये जो है बड़बड़ाता हुआ, कैसी हुकूमत है, कैसा सिस्टम है, चैन से सोने को भी नहीं मिलता, क्यों भाई, अभी तुम खेत में दोपहर में काम कर रहे थे तब गर्मी ज्यादा थी, अब गर्मी ज्यादा है, वहां तो खुली धूप में तुम थे, यहां कम से कम छत तो है, सूरज की गर्मी तो नहीं है, यकीनन जो गर्मी 12 बजे दोपहर में थी वो गर्मी 12 बजे रात में नहीं है, 12 बजे दिन में कोई शिकायत नहीं, 12 बजे रात में बड़ी शिकायत, कहा वो काम की जगह थी या आराम की जगह है। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, वहां हमें आराम की तवक्को नहीं थी, वहां के ऊपर मुश्किल को बर्दाश्त करना आसान है। अजीजो समेटू अपनी बात को, ज्यादा जो है ये फैलाओ नहीं, कम वक्त में आपकी खिदमत में जो है बहुत सारी बातें कहनी है। हम इस दुनिया में हैं, इस दुनिया में हमारी पोजीशन क्या है, खेत में पोजीशन, घर की पोजीशन नहीं, जो दुनिया में शुरू से आखिर तक जो हमारे, चाहे खेत में हो चाहे घर में हो, मस्जिद में हो या स्कूल में हो, ये पूरी दुनिया में जो हम आए हैं तो हमारी हैसियत क्या है, किस लिए हम यहां आए हैं, काम करने या आराम करने, हमें अपनी हैसियत मालूम है कि हम आए किस लिए हैं। लिहाजा सबसे अहम सवाल हमारी जिंदगी का, जिसका जानना निहायत जरूरी है, कि हम इस दुनिया में आए किस लिए हैं, इस दुनिया में हमारी पोजीशन क्या है, और दुनिया की हमारी निगाहों में क्या पोजीशन है। इस बात का अगर जवाब मिल जाएगा तो अमल की कीमत भी बढ़ जाएगी और मुश्किलों का बर्दाश्त करना आसान भी हो जाएगा। खुदा का शुक्र है हमारे उन इमामों का जिन्होंने इस नाजुक मौके पर हमारी जो है रहनुमाई की। हम अहले बैत से यूं ही मोहब्बत थोड़ी कहते हैं, बहुत मतलबी हम लोग हैं, हम अगर अहले बैत पर जान छिड़कते हैं आधी रात में उनकी याद करने के लिए इकट्ठा हुआ, यूं ही नहीं आ गए हैं, वो हमारे काम बहुत आते हैं। इतने अहम सवाल का जवाब कौन देगा कि इस दुनिया में आने का मकसद क्या है हमारा, इस दुनिया की क्या हैसियत है, ये आराम गाह है या काम की जगह है। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम इस सवाल का जवाब वो दे गए, कहते हैं कि इन्नम दुनिया सूकुन मिनल अस्वाक, इस दुनिया की हैसियत दुनिया क्या है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, ये पूरी दुनिया पैदा से लेकर के मौत तक की जो तुम्हारी दुनिया है, ये इसकी हैसियत जो है मार्केट की है, बाजार की है। आप में से अक्सर लोग वो हैं जो कारोबारी आदमी है ना, ये जो है व्यापारी हैं। इस दुनिया की हैसियत बाजार की है, तुम्हारी हैसियत ये जो है बिजनेसमैन की है, ताजिर की है, और ये जो है व्यापारी की है। दुनिया का में काहे के लिए हम आए हैं, तजारत करने के लिए आए हैं, ये जो है बिजनेस करने के लिए आए हैं। तो दुनिया की हैसियत क्या हो गई, बाजार की। हमारी आपकी हैसियत ये जो है व्यापारी की। हो हर व्यापार में ये जो है कैपिटल चाहिए, बगैर कैपिटल इन्वेस्ट किए हुए कोई कारोबार होता है नहीं, होता ना। हर मार्केट में अगर आना है इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए, बगैर कैपिटल के बिजनेस नहीं होता, चाहे अपना हो चाहे लोन लें चाहे भीख मांग के लाएं, बहरहाल कैपिटल होना चाहिए आपके पास। लोग बाजार दुनिया में जब जाते हैं आम कारोबार में, उनका कैपिटल डॉलर होता है, पाउंड है, सोना है, चांदी है, ये जो है दिरहम है, दीनार है, रुपया है। इस बाजार में जो हम बिजनेस करने आए हैं, इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल हमारी आपकी ये जो है जिंदगी है। कैपिटल जो सरमाया हमने इन्वेस्ट किया है वो क्या है? वो हमारी और आपकी जिंदगी है, हयात है। ये इस वक्त जो हम आप बैठे हुए हैं, ये अपना जो कैपिटल है उसे खर्च कर रहे हैं। अब किसी का कैपिटल 70 बरस का है, किसी का 100 बरस का है, किसी का 60 बरस का है, किसी का 50 बरस का, किसी के 40 बरस का, किसी का 30 बरस का, किसी का 20 का है ना। सबके पास एक तरह का कैपिटल नहीं है। गिनते चले जाएं, दुनिया की हैसियत ये जो है मार्केट की, हमारी हैसियत व्यापारी की। कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है वो क्या है? वो है हमारी जिंदगी, वो हमारी ये जो है जिंदगी है। अच्छा, हर आदमी जो मार्केट में जाता है, मार्केट ही में ये जो रह जाता है या वापस भी घर जाता है। अब कोई 8 घंटा काम करता है, कोई 10 घंटा काम करता है, कोई 12 घंटा, कोई ओवरटाइम करता है, कोई ओवरटाइम, मगर जाते तो सभी वापस है ना। कोई मार्केट में रह नहीं जाता, मार्केट में रहता कोई नहीं, वापस सबको जाना है। इस मार्केट से भी हमें वापस जाना है और इस वापसी का नाम है मौत। मौत खत्म हो जाने का नाम नहीं है, मौत क्या है? वापसी का नाम है। अच्छा, मार्केट में जितने लोग आते हैं, जाना तो सबको है, वापस सब जाते हैं, कुछ फायदा लेके जाते हैं, कुछ घाटा लेके जाते हैं। सबको मार्केट में फायदा होता है? नहीं, कुछ को फायदा होता है, कुछ को घाटा होता है। जिसको फायदा होता है वो खुश खुश घर जाता है, और जिसे मार्केट में घाटा हो जाता है, घर जाने को जी नहीं चाहता है। बाल बच्चों को मुंह क्या दिखाएंगे? लिहाजा बास की मौत जब आती है तो खुशी खुशी मौत को गले लगाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तुम्हारी निगाह में मौत कैसी है, जवाब देते अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा शीरी है। वो कौन है? वो जिन्हें फायदा हुआ। अच्छा, फायदा घाटा होता क्या है? बहुत सादा सादा बातें बयान कर रहा हूं आपके लिए, बहुत सिंपल। फायदा क्या होता है, घाटा क्या होता है? कहते हैं वो बिजनेस में जो फायदा ये है कि अगर माल की कीमत मिल गई तो फायदा, अगर माल की कीमत मिल गई तो फायदा, और अगर माल की कीमत से कम मिला तो घाटा। $1,00,000 का घर लिया था, बेचने गए 80,000 का बिका, क्या कहते हैं? घाटा हो गया। अगर 1,00,000 का बिका, 1,25,000 का बिक गया, 1,50,000 का भी, क्या कहते हैं? फायदा। वो यही है ना, माल की कीमत मिल गई, याद रहे, माल की कीमत मिल गई तो फायदा, कीमत से कम बिका तो घाटा। माल हमारा क्या है? वो माल जो मार्केट में ले आए हैं वो क्या है? याद है ना, क्या इन्वेस्ट किया है? जिंदगी। जिंदगी की कीमत है क्या? इस दुनिया में इस जिंदगी के बदले में क्या मिल जाए कि हम कहें फायदा, और अगर वो न मिला तो घाटा। जिंदगी की कीमत है क्या? सोना, चांदी, ये जो है डॉलर, पाउंड, बिल्डिंग, गाड़ी, ओहदा, मनसब, क्या है इसकी कीमत? कुर्बान जाए हमारी जिंदगी उस अली के जिसने हमें माल की कीमत बता दी। क्योंकि जो लोग कारोबार करने जाते हैं, अगर खुद उनको नहीं मालूम है ना, तो दूसरों से पूछते हैं ना। भाई हमारे पास हीरे की अंगूठी है और हम समझ रहे हैं ये शीशा है, एक चॉकलेट के बदले में बेच के चले आए, बहुत खुश कि शीशे के बदले में चॉकलेट मिल गई। बाद में मालूम है अहमक वो शीशा नहीं था, वो हीरा था, हीरा। तो सर पीटेंगे ना, हाय क्या हो गया। लिहाजा अगर कोई हमारे माल की कीमत बता दे तो कितना उसका शुक्रिया अदा करेंगे, कितना उसका शुक्रिया अदा। भाई शुक्रिया आपका, आपने मुझे बता दिया शीशा नहीं हीरा है। हमारी जिंदगी की क्या कीमत है जो हमने इन्वेस्ट किया है इस ये जो है दुनिया में, बाजार है दुनिया में।
एक दफा मेरा मौला आगे बढ़ करके सहारा देता है, सहारा देता है, मालूम है तुम्हारे जिंदगी की क्या कीमत, आला وَإِنَّهُ لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ سَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ, आगाह हो जाओ, ये कैपिटल बड़ा महंगा है, बड़ा कीमती कैपिटल है जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, इसकी कीमत जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। फला तभी हुआ इल्ला बेहा, देखो जिंदगी को डॉलर के बदले में न बेचना, जिंदगी को पाउंड के बदले में न बेचना, जिंदगी को सोने चांदी के बदले में न बेचना, जिंदगी को होदे और मनसब के बारे में न बेचना, अगर बेचना तो जन्नत के बदले में बेचना, जो चीज तुम्हें जन्नत से करीब कर दे वो फायदे का सौदा है, और जो जन्नत से दूर कर दे वो घाटे का सौदा है। एक सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। उमर साद ने भी सौदा किया और हुर ने भी सौदा किया। उमर साद ने जिंदगी किस चीज के बदले में बेची, रे की हुकूमत, और हुर ने तशनगी के बदले में। जहां जा रहा था वहां प्यासी तो थी, अंजाम क्या हुआ, एक है सलामुल्लाह अलैह और एक है लानतुल्लाह अलैह। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हुर भी है और हुरमुला भी है, क्या फर्क है दोनों का, हुर और हुरमुला कभी गौर किया इसके ऊपर, दोनों में फर्क क्या है, एक ने ये जो है बिजनेस किया घाटे का सौदा किया, क्यों, माल की कीमत वो नहीं लिया जो मिलनी चाहिए थी, हुर पहचान गया भाग गया, कीमत बोली। तो हमारी हैसियत ये जो है व्यापारी की, दुनिया की हैसियत ये जो है मार्केट की है, बाजार की है, जो इन्वेस्ट किया है वो क्या है, जिंदगी। हर किसी को फायदा नहीं मिलता, किसी को फायदा किसी को घाटा, फायदा क्या है, माल की कीमत मिल जाए तो फायदा, ना मिले तो घाटा, वापस जाना है यहां से, वापसी का नाम है मौत, फायदा लेके गए तो खुशी खुशी जाएंगे, घाटा हो गया मगर जाना तो पड़ेगा, कैसे भी जाए जाना तो पड़ेगा। तो हमारे माल की कीमत जन्नत, ये किसके माल की कीमत है जन्नत, आम मोमिनों की, मोमिनों की जान की कीमत जन्नत है, और जो अमीरुल मोमिनीन है, जो कसीमुन नार वल जन्ना है, उसके नफ्स की क्या कीमत है। हमारे नफ्सों की कीमत तो अली ने बताई, और अली के नफ्स की कीमत अल्लाह ने बताई, व मिनन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, मोमिनों के नफ्स की कीमत जन्नत है, अली के नफ्स की कीमत रज़ाए इलाही है। सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हैसियत का अंदाजा हो गया, पता चल गया। अच्छा मजे की बात यह है कि ये जो कैपिटल मिला है एक ही दफा के लिए मिला है, फिर लोन भी नहीं मिलेगा, एक दफा के लिए मिला है, क्योंकि हमारा अपना तो नहीं ना है कैपिटल, किसी ने दिया है, बख्शिश है ना, जिंदगी हमारी अपनी तो नहीं है, कहां से खरीदा है भाई। कोई चीज का मालिक कब होता है इंसान, या खरीदे या बनाए या जो है विरासत में मिल जाए, तीनी चीजें तो है ना, खरीदा कहां से खरीदा, पता बता दे हमें कहां से खरीदा, कि और खरीद लाए, नहीं मार्केट में तो कहीं नहीं मिलता। अच्छा हमने खुद बनाया जिंदगी अपनी, अपनी जिंदगी अगर बनाने का अपने इख्तियार में होता तो ये 50-60-70 साल ना बनाते। मीरास में मिली मां बाप से, अरे जिनके पास खुद नहीं वो हमें क्या देंगे, जो जिंदगी कहीं से मिली है हमें, देने वाला अल्लाह, और उसने कहा कि एक दफा दिया है फिर ना देंगे, एक दफा दिया है फिर मांगोगे भी तो ना देंगे। कुरान में ऐलान कर दिया, हत्ता यदा जा अहदहुमुल मौत, जब किसी के मौत का वक्त आता है, यानी जब उसका कैपिटल खत्म हो जाने लगता है, खत्म हो गया कैपिटल, तो क्या कहता है, काला रब्बिरजिउनी लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरकत, थोड़ी सी थोड़ा सा कैपिटल और दे दे, क्योंकि इस कैपिटल को हमने वहां सर्फ नहीं किया जिसके बदले में जन्नत मिलती, घाटे का सौदा करके आए हैं, थोड़ा सा और दे दे, अब की जो है होशियारी से बिजनेस करेंगे।
आपकी घाटा ना होने देंगे। जवाब कल्ला, अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। इन्हा कलिमतुन हुआ काइलो है, ये बकवास कर रहा है, थोड़ी सी और दे दे। खुदा तेरे बारे में सुना था तू करीम है, तेरे बारे में सुना था कि तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। अब नहीं का जवाब तो वही देते हैं जो कंजूस या तो होते हैं या आजीज है ही नहीं, तो देंगे क्या? खत्म हो गया भाई, अब नजर बट चुकी, अब नहीं है, अब आया करो। जवाब वही मिलता है, नहीं का जवाब कहां मिलता है? या इंसान ये जो है कंजूस है, बखील है, या आजीज और नातमा है ही नहीं उसके पास। खुदाया तू तो करीम है, तू तो बखील नहीं है, तू तो इतना करीम है कि बिला मांगे दे देता है, और तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं, तो गनी है, तो गनी भी है, तू करीम भी है। तो खुदाया पहली जिंदगी बिला मांगे दे दी थी भाई, हम जब दुनिया में आए तो क्या ये जो मांगा था अल्लाह से हमने, बिला मांगे मिली ना जिंदगी, पहला कैपिटल बिला मांगे दिया, अब मांग रहा हूं दे दे, तेरा कर्म कहां चला गया? जवाब मिलेगा, ये मेरा कर्म ही है कि अब न दूंगा, ये मेरे कर्म की वजह से है। खूब तवज्जो कीजिएगा, मेरे कर्म का तकाजा ये कह दूं कि एक ही दफा दूंगा, फिर नहीं। अगर खुदा ने ये ऐलान न किया होता अजीजो, तो शायद अपनी पहली जिंदगी में कोई भी अच्छा काम न करता। भाई दो जिंदगी मिलने वाली, एक अभी जिंदगी, जब मरने लगेंगे फिर मांगेंगे, फिर दे देगा। तो शैतान के बहकाने का दरवाजा खुला रहता ना, अल्लाह ने यह कह के दरवाजा बंद कर दिया कि एक ही जिंदगी है बस। वरना अगर दो जिंदगी होती, कहते पहले जिंदगी में मौज मस्ती करो, दिस इज माई लाइफ, मेरी जिंदगी, जैसे चाहूं जीऊं आपसे मतलब, बोलते हैं ना। अव्वल तो आपकी लाइफ नहीं है ये किसी का सदका है, ये जिंदगी आपकी नहीं है, किसी का सदका है, और एक ही दफा है, फिर नहीं मिलेगी। वरना कहते पहली जिंदगी में हैश करेंगे, दूसरी जिंदगी में फिर तौबा इस्तगफार करके अच्छे आदमी बन जाएंगे, और अगर दूसरी मिल जाती ना, उसमें भी ये जो है बदमाशी से बाज ना आता। शैतान क्या बहकाता, कहता जो अल्लाह दो दे सकता है वो तीन भी दे सकता है, लिहाजा ये तो उसका कर्म है, ये उसकी रहमत है, उसने दरवाजे को बंद कर दिया, एक दफा दिया है फिर ना देंगे। अल्लाह एक ही दफा मिली है जिंदगी, फिर जब जो चीज एक ही दफा मिलने वाली होती है उसके बारे में तो हमें एहतियात से काम। अच्छा वो भी नहीं पता है कितनी, बड़े मजे की बात है ना, पता ही नहीं कि है कितनी, कब खत्म होने वाला, खत्म तो हो रही है ये तो मालूम है, ये तो पता है, घट रही है, कितना रह गया है ये नहीं मालूम। 10 साल का अभी कैपिटल और है, 5 साल का है, साल भर का, एक महीने का, एक हफ्ते का, एक दिन का, एक घंटे, मुमकिन अभी बोलते बोलते चुप हो जाएं। सुलेमान अभी खड़े खड़े चले गए ना, और बैठने का भी मौका नहीं मिला, तो पता नहीं कैपिटल बचा कितना है। तो ऐसे मौके पर इंसान को फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम होशियार करके गए हैं, ये अपना आदम इन्नका लम तज़िल फी हद में उम्रिक मुंदो सकत्त मिन बत्न उम्मिक, ए इंसान जिस दिन से तू मां के पेट से पैदा हुआ है उसी दिन से तेरे कैपिटल के खत्म होने का मीटर चलने लगा है, खत्म हो रहा है। बर्थडे का क्या मतलब होता है, 20वीं बर्थडे क्या मतलब, यानी 20 साल का कैपिटल गया, घट गया ना। अगर फर्ज कीजिए 60 साल का तो 40 ही बचा, 20 गया, 70 साल का था तो ये जो है 50 बचा, 20 गया। तो कैपिटल जाने पे खुश होना चाहिए या गम, बर्थडे पे खुशी मनाना चाहिए या गम मनाना चाहिए, है ना एक सवाल, बर्थडे पे क्या करें, कैपिटल घटने की खुशी मनाई जाती है या गम मनाया जाता है। अचानक बैंक से खबर आई कि आपका जो है 20 लाख डॉलर चला गया, तो खुशी की बात है या गम की बात, बर्थडे में क्या करें, खुशी मनाए या गम, खुशी भी मना सकते हैं गम भी मना सकते हैं। हालात पर डिपेंड करता है, हालात पर डिपेंड करता है। खुशी भी मना सकते हैं, गम भी मना सकते हैं। जो गया है उसके बदले में क्या मिला है? अगर 20 लाख डॉलर चला गया और पता चला कि 40 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी मिली है, फिर तो खुशी की बात है ना, ये 20 गया 40 मिला। लेकिन अगर 20 गया और मिला कुछ नहीं तो गम की बात है। बर्थडे मनाने से पहले हिसाब कर लो, ये जो कैपिटल गया बदले में क्या मिला? माल की कीमत अगर मिल गई तो खुशी मनाओ। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर माल की कीमत मिल गई तो खुशी मनाओ, और अगर माल की कीमत ना मिली, अगर जिंदगी उन कामों में सर्फ हुई है जो हमें जन्नत से करीब कर दे तो खुशी का मकाम है, और अगर जिंदगी उन चीजों में सर्फ हो गई जिसने हमें जन्नत से दूर करके जहन्नम से करीब कर दिया है तो गम मनाने का मकाम है। बर्थडे का तस्वुर समझ में आया? बर्थडे यानी हिसाब का दिन है। हर व्यापारी एक दिन अपना हिसाब करता है ना, बैठ करके कितना खर्च हुआ कितना नहीं खर्च हुआ। खब दुनिया बाजार, हम ये जो है व्यापारी, कैपिटल जिंदगी, वापसी मौत, नफा माल की कीमत मिल जाए। माल की कीमत क्या है? जन्नत। जन्नत मिलेगी कैसे? किन कामों में लगाए जन्नत मिलेगी? कहाँ मिलेगी? अगर होता है जब लोग मार्केट में जाते हैं उनको बहुत सारा, देखिए अगर मार्केट में फकत एक माल है तब तो ये जो है खरीदना आसान हो जाता, बच्चे को भेज दो लेते आएगा, एक ही कीमत है, एक माल है, जाओ लेते आओ। लेकिन अब वहां पर आए मार्केट में देखा तरह तरह का माल है, कहाँ इन्वेस्ट करें? इस कैपिटल को कहाँ इन्वेस्ट करें जहां फायदा हो सके? अब जब बाजार दुनिया में हम आए सरमाए हयात को लेकर के, तो क्या देखा? यहाँ कुफ्र भी बिक रहा है, यहाँ ईमान भी है, निफाक भी है यहां के ऊपर, अहले बैत की मोहब्बत भी है, अहले बैत की दुश्मनी भी है। लगाए कहां पर, किधर इन्वेस्ट करें? घबरा रहे हैं, चकरा रहे हैं। ऐसे मौके पे क्या करते हैं? हमें पता नहीं है तो हम कहां जाते हैं? दलाल के पास जाते हैं, ये जो है ब्रोकर के पास जाते हैं। हर मार्केट में एक ये जो है ब्रोकर होता है ना। दलाल का लफ्ज सुनने मेरा खराब लगता है, इतना खराब लफ्ज है नहीं। बाद अल्फाज होते जो अपना माना खो बैठते, क्या किया जाए, आज के जमाने की हालत ही यही है। अब जैसे ही सुनते हैं इंसानी हकूक, ह्यूमन राइट, अजीब सी तबीयत होने लगती है। आजादी, जमहूरियत, ये जो है डेमोक्रेसी, क्यों? इसलिए कि ये अपने सही माना में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जब इंसानी हकूक का नारा बुलंद किया, वहां बुलंद किया जाता जहां अपना फायदा होता है। डेमोक्रेसी का नारा वहां बुलंद किया जाता जहां अपना फायदा होता है। डेमोक्रेसी के लड़ने वालों की हिमायत वही होती है जहां अपना फायदा वहां भूल जाते हैं। सीरिया में याद आता है, बहरीन में नहीं याद आता। सऊदीया में याद नहीं आता, ईरान में याद आता डेमोक्रेसी, जहां एक इलेक्शन न हुआ आज तक। वो सीरिया में ये जो है डेमोक्रेसी कायम करने गए हैं। सऊदी अरब और कतर क्या क्या चाहते हैं? सीरिया में डेमोक्रेसी कायम करना। कौन? सऊदी अरब। ये जो है डेमोक्रेसी जानते भी हो क्या होती है? तो बहरहाल बाद अल्फाज हैं जो अपना माना खो बैठे हैं, डेमोक्रेसी और फला फला। ऐसे ही जो है वो दलाल, उन्होंने दलाल अच्छा लफ्ज है, दलील से बना है दलाल। दलील यानी रास्ता दिखाने वाला, दलाल ज्यादा रास्ता दिखाने वाला, दलाल कहते हैं। अभी मैंने आया जो पुलिस का तर्जुमा भी नहीं किया, वो उसी से बनी, या अय्युहल लदीना आमनु हल अदुल्लुकुम, ये दल्ला यदुल्लो, दलील दलाल सबका रूट एक है। यानी क्या तुम्हें मैं रास्ता दिखा दूं? दलाल जो रास्ता दिखाए। अब ये जो है रहबर की शक्ल में रहजन इतने आ गए कि रहबरी के नाम से भी हमें एलर्जी होने लगी। तो हर मार्केट में कुछ दलाल होते हैं, दलालों से पूछा जाता है आप बताइए कि कहां इन्वेस्ट करें। इस बाजार दुनिया में भी दलाल है, मगर दो दलाल है, एक शैतान है एक रहमान है। दो रास्ता दिखाने वाले हैं, एक हकीकी रास्ता दिखाता है, एक रास्ता दिखाने के नाम के ऊपर जो है मिस गाइड करता है। अब या हमारी आपकी मर्जी है कि दल्लाल रहमान की आवाज सुने या शैतान की आवाज सुने, अपनी अपनी मर्जी है। बाजार दुनिया में जब आए क्या खरीदें, यहां तो तरह तरह का माल बिक रहा है। हमारे माल की कीमत क्या है याद रहे, कीमत तो मालूम हो गई, कीमत है जन्नत, मगर ये कीमत मिलेगी कहां पर, किसकी दुकान पर जाए जहां मिल जाए, कहां पर जाए, क्या खरीदे कि फायदा हो जाए, हमारे माल की कीमत निकल आए। एक दफा खुदा आगे बढ़ता है, हम बताते हैं तुम्हें हमसे अच्छा जो है ब्रोकर और कहां तुम्हें मिलेगा, हमसे अच्छा ब्रोकर कहां मिलेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ साहबान ईमान, उस बिजनेस का पता बता दें कहां इन्वेस्ट करना है। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, रहनुमाई कर दे उस बिजनेस की तरफ जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले, यानी जहां तुम्हें तुम्हारे माल की कीमत मिल जाए। हाँ खुदा बता दे इससे अच्छी क्या बात है, हम तो इसके लिए कीमत भी खर्च देने को तैयार हैं, फीस देते हैं ना, ब्रोकर दुनिया में फ्री में काम नहीं करते, कमीशन लेता। अल्लाह कहता हमें कमीशन वमीशन नहीं चाहिए, कमीशन ही देना है तो खुम्स ज़कात के नाम पर हमारे गरीब बंदों को दे देना, हम तो गनी हैं, हम बेनियाज हैं, मुफ्त में तुम्हें मशवरा देते हैं। बता दे खुदा, कहता है तूमिनून बिल्लाह व रसूलह, इसको कहां लगाओ, कहां इन्वेस्ट करो, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने में। खुदा किससे कह रहा है, किससे कह रहा है, काफिरों से, साहिबान ईमान से कह रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान लाने वालों, रे हम तो ईमान ला चुके, आप क्या ईमान लाएं। खुदा कहता है ईमान लाने वालों तुम्हें उस तजारत का पता बता दे जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। हाँ बता दे तो क्या कहता है, कहता ईमान लाओ। भाई जो ला चुके अब कैसे लाएंगे, जो बाहर खड़े उनसे अगर हम कहें कि जो लोग बाहर खड़े हैं वो अंदर आ जाए तो उनको हम एक एक लाख डॉलर देंगे, तो बात समझ में आती है, वो अंदर आ जाएंगे। लेकिन जो यहां बैठे हैं उनसे कहें, जो लोग यहां बैठे हैं अगर यहां बैठ जाएंगे तो उनको हम एक लाख डॉलर देंगे। मौलाना मैं तो बैठा हुआ हूं, रात ज्यादा हो गई है, ज्यादा मैं जैसे पढ़ने से कुछ वो तो नहीं हो गया है आपको, भाई बैठे हैं अब क्या, अब कैसे बैठेंगे। अब हमसे तो कह सकते मगर अल्लाह से नहीं कह सकते, हमारी तो खोपड़ी घूम सकती है, अल्लाह के तो नहीं ना है। फिर क्या मतलब है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईमान दो तरह का होता है, ऐसा तो नहीं है कि ईमान जो है वो दो तरह का है, एक बा असर ईमान, एक बे असर ईमान। एक ईमान वो है जो हमें जन्नत से करीब करता है, एक ईमान वो है जिसमें कोई गारंटी नहीं जन्नत से करीब करने की। अब हम कुरान देखते हैं वहां लगता है कि वाकई दो तरह का ईमान है, एक बा असर ईमान, एक बे असर। तीन चार तरह के ईमान है, मैं फकत दो एक पेश करूंगा क्योंकि वक्त कम रह गया। कुछ ईमान वो होते हैं जो ये जो है फसली और मौसमी ईमान होता है, फसल होती है ना, आम की एक फसल होती है, उस जमाने में अगर चले गए ये जो है गुजरात पहुंच गए तो अल्फांसो जो है तैयार मिलेगा, अभी चले गए तो कुछ नहीं मिलने वाला है। एक फसल होती है आम की, फसल आई चली गई, मौसम आया चला गया। ऐसे ही बादलों के ईमान का एक मौसम होता है, आता है और चला जाता है। बादलों का मौसम जो है दो महीना आठ दिन का होता है, पहले मुहर्रम से शुरू होता है, आठ अव्वल को खत्म हो जाता है, पहली को आया आठ को चला गया। बास का मौसम दस दिन का होता है, पूरे साल का नहीं हो, पूरे दो महीना आठ दिन का नहीं होता, पहली मुहर्रम से दस मुहर्रम तक का। इस हाल का मजमा पहली मुहर्रम से दस मुहर्रम का कुछ और रहा होगा और आज का है ना फर्क। अच्छा उसमें भी बास का मौसम फकत आशूर के दिन आता है, बास का ईमान माह रमजान में जागता है। रमजान का महीना, टीवी बंद कर दो भाई, बंद कर दो। क्यों भाई, टीवी अगर हलाल है तो रमजान और गैर रमजान में क्या फर्क है।
और अगर हराम है तो फिर क्या रमजान के बाद अल्लाह मर गया?
नहीं नहीं, उनका मौसम चला गया,
उनका मौसम चला गया, रमजान का महीना आया, मौसम खत्म।
और बाजों का मौसम फकत इफ्तार के मौके पे आता है।
अभी इफ्तार का मौका आया, सबसे आगे आगे किसी ने कहा आप कहां जा रहे हैं भाई, नमाज आप पढ़ते नहीं, रोजा आप रखते नहीं, आपको इफ्तार से क्या मतलब? इफ्तार ये जो है रोजेदारों के लिए, आप क्या करने आए हैं? कहा हां मालूम है, मैं नमाज भी नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता। क्या चाहते, इफ्तार भी ना करो पक्का काफिर बन जाऊं?
कुछ तो ईमान साबित करने के लिए चाहिए, ये मौसमी ईमान है। कुरान ने मौसमी ईमान का तस्करा किया है, मौसमी ईमान का कुरान ने तस्करा किया, अपने बात से नहीं कह रहा हूं। कुरान कहते रकबू फिल फुल्क, जब ये समंदर का सफर करते जहाज पे बैठने लगते हैं। किसी ने कहा भाई जहाज का सफर कर रहे हो, समंदर का सफर है, खतरनाक है, थोड़ा सा ये जो है बिस्मिल्लाह कह लो, सदका निकाल दो, आयतुल कुर्सी पर मत छोड़ो, ये मौलवियों के बकवास में कहां पड़ गए? जो चीज हमें बचा सकती है आयतुल कुर्सी थोड़ी बचाएगी, सदका थोड़ी बचाएगा, जहाज नहीं देखते कौन सा है, इसको फला इंजीनियर ने ये जो है डिजाइन किया है, ये डूबने वाला नहीं, कैसा ही तूफान आ जाए फला ने डिजाइन किया, टाइटन है टाइटन। अब इंजीनियर बेचारा जब डिजाइन करता है तो कैसे डिजाइन करता है? पिछले जितने तूफान आए हैं उनकी ताकत को इकट्ठा करता, जमा करता है कि अब तक जो तूफान आए हैं वो 6 पैमाने के, 8 पैमाने का, आखिरी तूफान मसलन ये जो है 9 पैमाने का आया है, तो हम जहाज बना देंगे 12 पैमाने वाला, तो 9 से ज्यादा तो आने वाला है, 3 एहतियात के तौर पर। आइंदा कौन सा आ सकता है उसे पता नहीं है। जब जहाज आया समंदर में तो 15 वाला तूफान आ गया, जिसको इंजीनियर ने सोचा भी नहीं था डिजाइन करते वक्त, सोनामी आ गया, सोनामी। अब वो जहाज अचकोले लेने लगा, जहाज के परखचे उड़ गए, जिस जहाज पे बड़ा नाश था कि जहाज बचा लेगा हमें, जैसे उन्हें नाश था पहाड़ के ऊपर कि पहाड़ बचा लेगा हमें। अब जब वो डूबने का पूरा आ गया, अब दिल मुतवज्जे हुआ अल्लाह की तरफ, मौसम आ गया, रकिबू फिल फुल्क दउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, जब तूफान में डूबने लगे अब पूरे इखलास के साथ अल्लाह, अब कोई सहारा और नहीं रह गया ना, खालिस तौहीद, कोई शिर्क नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, ना जहाज ना इंजीनियर ना ये जो डिजाइन, कुछ नहीं, दउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, पूरे इखलास के साथ अल्लाह को पुकारा, खुदाया बचा ले हमें। वो बड़ा करीम खुदा है, ऐसे मौके पर जब लोग अच्छे हालात में हमें नहीं पूछते और बुरे हालात में पूछे तो हम क्या कहते हैं? अब हमारी याद आई, अब याद आई, अब तक कहां थे, अब तक कहां थे, यही कहते हैं ना। नहीं, वो बड़ा करीम है, वो किसी को ताना ओना नहीं देता, वो किसी को हाँ दिल से पुकारो, इखलास से अगर पुकारोगे शर्क नहीं, पूरे इखलास से सारी उम्मीदों को तोड़ करके उसे पुकारो, वो जवाब देता है। उसने जवाब दिया सही और सालिम, इनको साहिल पर पहुंचा दिया। फलम्मा नज्जैनाहुम इलल बर्फ हुम युश्रिकून, जैसे ही ये खुशकी पर पहुंचे इनके ईमान का मौसम रुखसत हो गया, दोबारा उसी शिर्क में जो है मुफ्त भूल गए दोबारा खुदा को। होता है ना बार दफा किसी आलिम की तकरीर सुन के कहते हैं मौलाना आज तो ईमान ताजा हो गया, ये ताजगी बस गेट तक होती है, फिर वैसे ही कि वैसे। एक ये जो है ज़रबुल मसल उर्दू है, मगर मैं वो कहूंगा नहीं कि वो टेढ़ी की टेढ़ी जो कहते हैं ना, वो मैं नहीं कहूंगा। ये ईमान जो मौसमी ईमान है, वक्ती ईमान है, इसका कोई फायदा नहीं, ये दर्दनाक अदाब से नहीं बचाएगा। जब खुदा कहता या अय्युहल लजीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन
تنجیکم من عذاب علیم. اے صاحبان ایمان کیا تمہیں پتا بتا دے اس تجارت کا جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا سکتا. پھر کہتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، یعنی کہنا چاہتا ہے اے فصلی ایمان والو، اگر دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو دائمی اور ہمیشگی ایمان اختیار کرو.
کچھ کے پاس ایمان ہے مگر عمل نہیں ہوتا. خدا کہتا ہے اے بے عمل ایمان والو، اگر دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو با عمل ایمان لاؤ. اب سمجھ میں آیا کہ اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. جس بازار دنیا میں ہم آئے ہیں تجارت کے لیے، ہر ایک کو تجارت میں فائدہ نہیں ہوتا، کچھ کو فائدہ کچھ کو گھاٹا. فائدہ کیا ہے؟ مال کی قیمت مل جانا فائدہ ہے. ہمارے مال کی قیمت جنت ہے. کہاں اس کو انویسٹ کریں؟ ایمان میں. کس ایمان میں؟ ابدی ایمان میں، عمل کے ہمراہ ایمان. جن لوگوں نے وہاں انویسٹ کیا تھا ایسے کامیاب بزنس مین ہوئے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی ہم آرزو کرتے ہیں، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. اے کربلا کے شہیدوں، اے کاش ہم بھی تمہارے ہی ایسی تجارت کر لیتے، اے کاش ہم بھی اپنی زندگی کو وہیں انویسٹ کر لیتے جہاں تم نے زندگی کو انویسٹ کیا ہے، تو ہم بھی ایک کامیاب بزنس مین بن جاتے. یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. انہوں نے کہاں انویسٹ کیا اپنی زندگی کو؟ ان کو زندگی کے بدلے میں کیا ملا؟ درہم و دینار ملا، سونا چاندی ملا، عہدہ و منصب ملا. انہیں زندگی کے بدلے میں پیاس ملی، انہیں زندگی کے بدلے میں زخم ملے، انہیں زندگی کے بدلے میں تیر ملے، تلواریں ملی. انہیں اس کے بدلے میں ان کی لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا، اس کے بدلے میں ان کی ناموس کی چادر چھن گئی. یہی تو ہوا تھا نا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے. نہیں پتا جملہ سمجھ کے کہتے ہیں یا سمجھے بغیر کہہ دیتے ہیں. یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. اے کاش ہم نے بھی اپنی زندگی کا سودا ایسے ہی کیا ہوتا، انہی مقامات پہ صرف کیا ہوتا. انہیں معلوم تھا کہ زندگی کی قیمت کس طرح سے مل سکتی ہے، راستہ جانتے تھے، اچھی طرح سے راستہ جانتے تھے. لہذا جب ان سے کہا بھی جاتا تھا چلے جاؤ تو جانے کو تیار نہیں ہوتے تھے. عزیزو، امام حسین نے شب عاشور کہا تھا نا، چوتھے امام کی روایت ہے، فرماتے ہیں مولا کہ میرے بابا نے میرے خیمے کے پاس ایک خیمہ نصب کر دیا تھا شب عاشور. چونکہ امام بیمار تھے، امام نہیں بیٹھ سکتے تھے، تو وہاں لگا دیا تاکہ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر امام کو اس کی خبر ہوتی رہے. میرے بابا نے ایک جملہ وہاں کہا تھا اپنے اصحاب کے بارے میں، انی لم ارا اصحابا اوفا من اصحابی و ابر، میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا صحابی نہیں دیکھے، اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا صحابی نہیں دیکھے ہیں، اپنے اصحاب سے زیادہ نیک صحابی نہیں. یہ کوئی خطیب نہیں کہہ رہا، امام کہہ رہے ہیں. خطیب کبھی جوش خطابت میں بات باتیں کہہ جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن امام کے ذہن سے کبھی کوئی ایسا جملہ؟ معصوم ہے نا امام، عصمت میں ڈوبے ہوئے جملے ہیں، امام کہہ رہے ہیں. امام کو پتا ہے کہ رسول کے اصحاب میں سلمان بھی ہیں، رسول کے اصحاب میں ابو ذر بھی ہیں، مقداد بھی ہیں، عمار بھی ہیں، مولا علی کے اصحاب میں جو ہے میسم تمار بھی ہیں، حجر ابن عدی بھی ہیں. ان سب کو نگاہ میں رکھ کر کے حسین کہہ رہے ہیں جتنا باوفا اور نیک میرا حبیب ہے اتنا باوفا تو سلمان بھی نہیں ہے، جتنا باوفا اور نیک میرا جون ہے اتنا باوفا اس کا آقا ابو ذر بھی نہیں ہے. کیا خصوصیت ہے اصحاب حسین میں، کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کا سودا کیا ہے، کیا کیا ہے انہوں نے. دو خصوصیتیں میرے سمجھ میں آتی ہیں کہ جو اصحاب حسین میں تھیں اور اصحاب پیغمبر میں یا اصحاب علی میں کم سے کم ابھر کے سامنے نہیں آئیں. پہلی خصوصیت ہے علم اور آگہی، دوسری خصوصیت ہے اختیار اور آزادی. جو لوگ پیغمبر کے ہمراہ میدان جنگ میں جاتے تھے، کیا انہیں میدان جنگ سے چلے جانے کی آزادی تھی؟
पैगंबर को छोड़ के मैदान से जा सकते थे? नहीं, मैदान से भाग जाना कुफ्र के बराबर था, यानी वो मजबूर थे मैदान में रहने पर। लेकिन हुसैन क्या साहब, हुसैन के साथ रहने पर मजबूर थे? मजबूर नहीं थे ना, हुसैन ने सबको आजादी दे दी थी। शब आशूर इकट्ठा इसीलिए किया था कि देखो ये फौज मेरे खून की प्यासी है, इन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है, अगर तुम हमें छोड़ के जाना चाहोगे ये तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे, ये तुम्हें खुशी खुशी रास्ता दे देंगे, चलो अच्छा हुआ फर्जंद जहरा अकेला रह गया, अपनी जगह से कोई नहीं उठा। कुछ जंजीरें थी जो इनके कदमों में पड़ी हुई थी, इमाम हुसैन ने एक एक जंजीरों को खोलना शुरू किया, कहा शायद तुम इसलिए मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहते हो कि तुमने मेरे हाथ पर बैयत कर ली है, और बैयत का तोड़ना हराम है, लो हम खुद से बैयत उठाए लेते हैं, अब तुम आजाद हो, जहां जी चाहे चले जाओ। फिर भी कोई नहीं उठा। दूसरी जंजीर इमाम ने खोली, कहा शायद तुम इसलिए नहीं जा रहे हो, तुम्हें खौफ है कि अब कयामत के दिन मेरी माँ फातिमा जहरा तुमसे पूछेंगी, अरे कितने बेशर्म थे तुम, मेरे लाल को तन्हा छोड़ के चले गए, तो तुम्हें ये खौफ है कि क्या जवाब देंगे, तो सुनो सुनो, हम खुद ही कयामत के दिन अपनी मादरे गरामी से कहेंगे अम्मा ये नहीं जाना चाह रहे थे, मैंने ही इनसे जाने को कहा था। फिर भी कोई मेरी जगह से ना उठा। अब हुसैन ने तीसरी जंजीर खोली, कहा शायद तुम इसलिए नहीं जा रहे हो कि तुम अगर हमें छोड़ के चले गए तुम्हारे गांव वाले तुम्हारी बस्ती वाले तुम्हें ताना देंगे, वो करीम आका था उसने जाने की इजाजत दे दी, तुम्हारी शराफत को क्या हुआ था, तुम्हारी गैरत को क्या हुआ था, तुम क्यों छोड़ के चले आए। तो सुनो, जाते जाते हमारे अहले बैत में से एक एक को अपने साथ लेते जाओ, जब तुम्हारे गांव वाले ताना देंगे तो कह देना हम अपनी जान बचाने नहीं आए थे, हम तो ज़ैनबो कुलसूम का पर्दा बचाने के लिए आए थे। फिर भी कोई अपनी जगह से जब ना उठा, तो हुसैन ने एक आखिरी जंजीर रह गई थी जिसको खोला है हुसैन ने, शायद तुम्हें हमसे शर्म आ रही है, शायद तुम्हें हमसे शर्म आ रही है, तुम हमारे सामने नहीं जाना चाहते हो, तो लो हम शमा बुझाए देते हैं, जब शबाब हम शमा ये जो है बुझाए देते हैं अंधेरे में, जिसका जी जहां चाहे चला जाए। लेकिन अजीजो तारीख करबला तो यही कहती है ना, जब हुसैन ने दोबारा शमा जलाई है तो आलम क्या था, असहाब हुसैन ने नियाम से शमशीरें निकाल करके अपने गले पर रख लिया था, अरे मौला कब तक इम्तिहान लीजिएगा, इससे अच्छा सौदा और कहां हो सकता है, आपका दामन छोड़कर एक जिंदगी क्या है, हजार जिंदगी भी अगर होती तो आप पर से कुर्बान कर देते। अजरकुम अल्लाह। दूसरा इम्तियाज असहाबे हुसैन का क्या है? दूसरा इम्तियाज है असहाबे हुसैन का इल्म आगही, जो रसूल के खुदा जो पैगंबर के साथ रसूल खुदा के साथ जो असहाब जंगों में जाया करते थे, क्या उन्हें पता था कि हम कल शहीद हो जाएंगे? दो एहतमाल था ना, हो सकता है शहीद हो जाएं, हो सकता है जिंदा सलामत पलट के आ जाएं, यही तो था ना। क्या सलमान जानते थे जब जंग में जाते थे कि शहीद हो जाएंगे, खंदक में आए हैं तो शहीद हो जाएंगे, खैबर में आए हैं तो नहीं? दो एहतमाल मुमकिन है, शहीद हो जाएं, मुमकिन है जिंदा सलामत पलट है, हुआ भी यही। सलमान किसी जंग में शहीद नहीं हुए, अबू ज़र शहीद हुए मगर जंग में नहीं, रब्जा के मैदान में भूख से एड़ियां रगड़ रगड़ के अबू ज़र ने जान दी, अम्मार जंग में शहीद हुए मगर पैगंबर के हमराह नहीं, सफीन में मौलाए कायनात के हमराह शहीद हुए। तो जो भी पैगंबर के हमराह जाता था, किसी को इस बात का यकीन नहीं था कि कल हम शहीद कर दिए जाएंगे। मैदान में आने का मतलब है जान का गवाना, जवान को कुर्बान कर देना, नहीं, दो एहतमाल था, मुमकिन है जान कुर्बान, मुमकिन है जान बच जाए। अल्लाह रे अंसार हुसैन, जो भी हुसैन के साथ था सबको पता था,
سب جانتے تھے کہ کل اگر ہم حسین کے ساتھ رہ گئے, کیونکہ حسین نے سب کو جو ہے بتا دیا تھا, حبیب میرے ساتھ رہو گے تو شہید کیے جاؤ گے, جان میرے ساتھ رہو گے تو شہید کیے جاؤ گے, بیٹا کا بیٹا علی اکبر اگر میرے ساتھ رہو گے سینے پہ برچھی کھانی پڑے گی, بھیا عباس اگر میرے ساتھ رہو گے شان قلم ہوں گے, ایک ایک کو بتا دیا تھا. جو بھی حسین کے ساتھ ہے یہ جانتے ہوئے ہے کہ کل ہمیں شہید ہونا. ایک مجاہد رہ گیا تھا جس کا نام حسین نے نہیں لیا تھا, وہ کون ہے؟ ذہن پہنچ گیا نا آپ کا, 13 سال حسن کا یتیم قاسم. قاسم کھڑے ہوئے, چچا جان اور میں, کیا میرا نام فہرست شہدا میں نہیں ہے؟ کیا میں شہید نہ ہوں گا؟ حسین ہاں اور نہ میں جواب تو دے سکتے تھے, لیکن ہاں اور نہ میں دیا ہوا جواب ان اصحاب کے قاسم کی عظمت کو اجاگر نہیں کر سکتا تھا. ایک دفعہ حسین پوچھتے, بیٹا قاسم یہ بتاؤ تمہارے نگاہوں میں موت ہے کیسی؟ قاسم کہتے, الیوم احلا من الاصل, آج جب زندگی میرے دین کے کام آ رہی ہے شہد سے زیادہ شیری. جب بھتیجے کا جواب سن لیا تو حسین نے عجب جواب دیا, کہا بیٹا قاسم کل تم بھی شہید کیے جاؤ گے, اور حد تو یہ ہے کہ تمہارا ننھا بھیا علی اصغر بھی شہید کیا جائے گا. بس یہ سننا تھا کہ اہل بیت کا بنی ہاشم کا یہ غیرت دوار نوجوان تڑپ گیا, چچا جان میں تو اپنے قدموں سے میدان میں جاؤں گا, میرا بھیا اصغر کیسے شہید کیا جائے گا؟ کہیں اشقیا خیمے میں تو نہیں گھس آئیں گے؟ اشقیا خیمے میں آئے نہیں. قاسم تمہاری غیرت کو سلام, تم سوچ کے تڑپ گئے, لیکن ہمارا سلام ہو صبر سید سجاد پر, بیمار کربلا سید سجاد پہ ہمارا لاکھوں سلام, صبر سید سجاد, اللہ کیسے صبر کا مالک, کس طرح سے سید سجاد نے یہ منظر دیکھا ہوگا. ارے خیموں میں لوٹ مچی ہوئی ہے, کوئی زینب کے سر سے چادر چھیڑ رہا ہے, کوئی سکینہ کو تماچے مار رہا ہے, کوئی ام کلثوم کی پشت پر تازیانے لگا رہا ہے. اجرکم اللہ, کیا عالم ہے صبر سید سجاد کا, کیا مقدر ہے سید سجاد کا. عزیزو سر کٹا دینا آسان تھا, لیکن ماں بہنوں کو برہنا سر دشمنوں کے نرغے میں دیکھنا بڑا مشکل کام تھا. یہی تو وجہ ہے نا, جب بھی کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, تو میرا امام طلب کے 3 دفعہ کہتے تھے شام شام شام. جب کسی نے کہا مولا کب تک روئیے گا, امام نے یہی تو کہا تھا کہ تو نے انصاف نہیں کیا. ارے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف نگاہوں سے صرف اوجھل ہو گیا تھا, اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے تہے تیغ کر دیے گئے, تم کہتے ہو کب تک روئیے گا. منحال نے پلٹ کے کہا آقا ارے شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے, راہ خدا میں قتل ہو جانا آپ کے خاندان کا افتخار. امام نے کہا منحال سچ کہا, شہادت میراث, راہ خدا میں قتل ہو جانا افتخار, لیکن کیا ماں بہنوں کا برہنا سر کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنا سرمایہ حیات اس بازار دنیا میں اگر انویسٹ کرے تو اس چیز کے بدلے میں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. معبود جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبر گیری کی توفیق کرامت فرما.
بہر الہٰ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه و انصاره۔ ماتم حسین۔
مرنا ستم عباس کا، کالے کپڑوں میں سب قافلہ ہے، یا الہی یہ کیسا سفر ہے۔ کالے کپڑوں میں سب قافلہ ہے، یا الہی یہ کیسا سفر ہے۔
کالے کپڑوں میں سب قافلہ ہے،
ایک بہن کھولے سر جا رہی ہے، جس کے بھائی کا نیجے پہ سر ہے۔
کالے کپڑوں میں سب قافلہ ہے، یا الہی کیسا سفر ہے۔
پوچھتا تھا جو رستے میں کوئی،
پوچھتا تھا جو
خطبہ پڑھ کے بتاتی تھی زینب،
خطبہ پڑھ کے بتاتی تھی زینب۔
میں تو دکھتر ہوں مشکل خسا کی، میرے بھائی کا نیجے پہ سر ہے۔ کالے
کپڑوں میں سب قافلہ ہے،
ظالموں کی ستائی ہوں لوگوں،
ظالموں کی ستائی ہوں لوگوں،
سر شہیدوں کے لائی ہوں لوگوں،
سر شہیدوں کے لائی ہوں لوگوں۔
میرے ماں جائے کا سر وہی ہے، مستقل جس پہ میری نظر ہے۔ رو کے کہتی تھی بالی سکینہ،
رو کے کہتی تھی بالی سکینہ،
آ کے کربل میں ڈوبا سفینہ،
آ کے کربل میں ڈوبا سفینہ۔
پہ آگ خیموں میں لگنے لگی ہے، اور مسند کے جلنے کا ڈر ہے۔ مجھ کو تھوڑا سا پانی پلا دو،
مجھ کو تھوڑا سا پانی پلا دو،
ورنہ بابا کو میرے بلا دو،
ورنہ بابا کو میرے بلا دو۔
رحم کچھ ظالموں کو نہیں ہے، پیاسے میرا جلتا جگر ہے۔ شام و کوفہ میں در در پھرایا،
شام و کوفہ میں در در پھرایا،
ایک قطرہ نہ پانی پلایا،
ایک قطرہ نہ پانی پلایا۔
وے پشتِ عابد پہ درہ لگایا، جس کی شدت سے زخمی جگر ہے،
کالے کپڑوں میں سب کا فلا ہے، یا الہی یہ کیسا سفر ہے،
در بدر ہے نبی کا گرانہ،
در بدر ہے نبی کا گرانہ،
کیسا بھولا ہے ظالم زمانہ،
کیسا بھولا ہے ظالم زمانہ،
ایک رسی میں بارہ گلے ہے، ہائے کتنا یہ مشکل سفر ہے، سفر ہے دنیا کے مٹائے مٹ نہ سکا، دنیا کو یہی غم آج بھی ہے، شبیر کا ماتم کل بھی تھا، شبیر کا ماتم آج بھی ہے، دنیا کے مٹائے مٹ نہ سکا، دنیا کو یہی غم آج بھی ہے، شبیر کا ماتم کل بھی تھا، شبیر کا ماتم فتووں کا بڑا سیلاب مگر، فتووں
کا بڑا سیلاب مگر،
حق بات دبائے دب نہ سکی، اگیار کی دے ہو نہ سکی، اپنا تو محرم آج بھی ہے، دنیا
کو مٹائے مٹ نہ سکا، دنیا کو یہی غم آج بھی ہے، شبیر کا ماتم کل بھی تھا، شبیر کا ماتم آج بھی ہے،
لیتا بھی نہیں اب نام کوئی، لیتا دنیا میں یزیدی پرچم
کا،
عباس نے لہرایا تھا جسے،
عباس نے لہرایا تھا جسے،
وہ دین کا پرچم آج بھی ہے، دنیا
کو
اسلام کے سچے سیدائی،
اسلام کے سچے سیدائی،
گنتی کے 72 کل بیتے، اسلام پہ مرنے والوں کی،
اسلام پہ مرنے والوں کی
تعداد بہت کم آج بھی ہے، دنیا یوں ختم ہوا دربار لئی، اب نام نہیں دنیا میں مگر، زینب نے بنا جس مجلس کی، ڈالی تھی وہ قائم آج بھی ہے، دنیا
کو مٹائے مٹ نہ سکا، دنیا کو یہی غم آج بھی ہے، شبیر کا ماتم کل بھی تھا، شبیر کا ماتم آج بھی ہے،
اس سر دے دیا لیکن بیعت سے، شبیر نے کیوں انکار کیا؟ دو لاکھ مسلمان منکر ہو، اس راز کا محرم آج بھی ہے دنیا کو مٹائے مٹ نہ سکا، دنیا کو یہی غم آج بھی ہے، شبیر کا ماتم قلبی کا، شبیر کا ماتم آج بھی ہے، کل اس کا لہو کام آیا تھا، اب رونے کے دی ہے غم اس کا، وہ محسن اعظم کل بیتا، وہ محسن اعظم آج بھی ہے دنیا مظلوم کا ماتم کل بریاز، ایک زہر تائل باطل کو، ذکر غم شاہ کرب و بلا، باطل کے لیے سم آج بھی ہے دنیا کو مٹائے مٹ نہ سکا،
مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسین، سامے غریب چھا گئی، سامے غریب چھا گئی، عابد کو غیرت آ گئی، پہرے پہ زینب آ گئی، عباس اور اکبر کہاں، مولا حق امام سام غریب باقی گھڑی، سام غریب باقی گھڑی، نے جیسے سب چادر چھینی، اور آگ خیموں میں لگی، خاموش تھا عرض و سما، مولا حق امام یا حسین یا حسین، صابر کی وہ لاڈلی، صابر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو ساکے پلی، جس کی امابن میں جلی، منہ پہ تماچوں کے نشان، مولا حق
Yeah.
आबिद का था ये इम्तिहान, आबिद का था ये इम्तिहान, पाँव में जकड़े बेड़िया, हाथों में बांधी रसिया, और सह कसे नौ के सिना, मौला हक इमाम मौला हक इमाम, या हसन या हुसैन या हुसैन, वो शाम का दरबार था, वो शाम का दरबार था, ज़ैनब खड़ी थी बेरिदा, ज़ालिम ने ये हंस कर कहा, अब है तेरा गाजी कहा, मौला वो असगरे बेशीर था, वो असगरे बेशीर था, और हुरमुला का तीर था, प्यासा गला क्यों करकटा, कापी जमीन और आसमां, मौला हक इमाम रो कर कहे कासिम की मात, मारा गया कासिम जवान, ऐ लाल मैं ढूंढू कहां, मेहंदी तेरी सहरा तेरा, मौला हक इमाम या प्यासे गले खंजर चले, चादर छीनी खेमे जले, आपस के परचम तले, रोती रही सैदानिया, मौला तीरों पे ताला सा तेरा, तीरों पे ताला सा तेरा, और जिस्म था खू में बरा, जब आया खाली जुलझना, पैरों में लिपटी बीबियां, अब है तेजानी की सदा, ए मातिम सुन लो जरा, है बीबी जैरा की दुआ, हर मातमी और नौहा खां, मौला हक इमाम थे जख्म वो तन पे हजार, थे जख्म वो तन पे हजार, था सीने पे जालिम सवार, खंजर चलाया बार बार, और हल्क से था खून रवां, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन।
गर्म रेती पे मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रेती पर मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, थक गया लाश उठा कर मैं भरे लश्कर की, लाश का सिम की मैं लाया हूँ कभी अकबर की, खुद बनाई है लहद मैंने अली असगर की, दो तसल्ली मुझे सीने से लगा लो अम्मा, गर्म रेती पर मैं तीर तलवारों से खंजर से बदन जख्मी है, खाक जलती है तो जख्मों में चुभन होती है, मेरे जख्मों से मेरे दिल का लहू जारी है, अपनी चादर को मेरे जख्म पे डालो अम्मा, गर्म रेती मेरे अब्बास खफा हो गया अम्मा मुझसे, वो नहीं आया उठा लाया था बाजू उसके, आप एक काम करे नहर किनारे जाके, मेरे रूठे हुए भाई को मना लो अम्मा, चकिया पीसी है गोदी में बिठा कर मुझको, जागती रहती थी जानू पे सुला कर मुझको, लोरियां देती थी झूले में झूला कर मुझको, एक दफा गोद में फिर अपनी सुला लो अम्मा, अरे कुछ देर का मेहमान हूँ तुम पास रहो, रित जख्मों में है आंचल से उसे साफ करो, आती है रोने की आवाज सकीना देखो, जाओ तुम जाके सकीना को संभालो अम्मा, देखो वो आग लगी शाम गरीबाई, देखो घबरा के निकल आई मेरी माँ जाई, देखो बेहोश सकीना कपड़ा है भाई, जाओ सज्जाद को शोलो से निकालो अम्मा, है गुजारिश मेरी तुमसे तो अब इतनी मादर, अम्मा बाबा की कसम कसम, ढांक लो मुंह पर चादर, देखा जाएगा ना अब तुमसे ये खूनी मंजर। कत्ल होता हूँ निगाहों को हटा लो अम्मा, होगी जब हश्र के मैदान में मजलिस बरपा, फर्श गम शेख का बिछाएंगी जनाबे जहरा, आएंगे हजरत शब्बीर की रेहान सदा। आज जी खोल के तुम अश्क बहा लो अम्मा, गर्म रेती पर मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा।
या हुसैन या हुसैन,
अस्सलाम ऐ मेरे बीमार इमाम, अस्सलाम।
محمد والے محمد سلوان، السلام علیکم یا رسول اللہ۔